परम प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, जीवन में धर्म समा जाए तो जीवन सुख शांति से भर जाए, अपने लिए भी सुख शांति, औरों के लिए भी सुख शांति। जीवन में धर्म नहीं होता है तो आदमी व्याकुल रहता है, अशांत रहता है, बेचैन रहता है, और वो व्याकुलता अपने तक सीमित नहीं रखता, बांटता है लोगों को, औरों को भी व्याकुल बना देता है, बेचैन बना देता है, दुखियारा बना देता है। तो जीना नहीं आता, जीने की कला नहीं आती। जीवन में धर्म समा जाए तो जीने की कला आ जाए। कौन सा धर्म समा जाए? बौद्ध धर्म समा जाए कि हिंदू धर्म समा जाए कि जैन धर्म समा जाए कि मुस्लिम धर्म कि ईसाई धर्म कि सिख धर्म? तो डूब ही जाएगा और अशांत हो जाएगा, क्योंकि धर्म कभी हिंदू होता नहीं, धर्म कभी बौद्ध होता नहीं, धर्म कभी ईसाई होता नहीं, मुस्लिम होता नहीं, सिख होता नहीं। ये संप्रदाय होते हैं, मनुष्यों का एक समूह, एक समाज, जो किसी एक तरह की खान पान वाला, एक तरह के व्रत त्योहार मानने वाला, एक तरह की वेशभूषा वाला, धर्म से उसका कोई लेन देन नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि पिछले 2000 वर्षों से धर्म और संप्रदाय दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए। धर्म कहते ही सुनने वाले के मन में यही उठता है पहला प्रश्न, कौन सा धर्म? देश ने यह सोचना ही बंद कर दिया कि धर्म अपने आप में स्वतंत्र हो सकता है, इन पुछल्लों के बिना धर्म हो सकता है, और इन पुछल्लों के बिना जब धर्म होता है तो सही धर्म होता है। धर्म कहते हैं भारत की पुरानी भाषा में स्वभाव को, प्रकृति को, गुण को। आज भी इस अर्थ में यह शब्द कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, भूल गए, कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना, तो आज भी कह देते हैं कभी कभी अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। अग्नि का धर्म है, इसमें हिंदू बने की क्या बात आई, इसमें क्या बात आई बौद्ध पने की, जैन पने की, ईसाई पने की, सिख पने की? धर्म है, उसका स्वभाव है जलना जलाना। बर्फ का स्वभाव है शीतल होना, शीतल करना, तो कहेंगे बर्फ का धर्म है शीतल होना, शीतल करना। कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है, रित है, जो सब पर लागू होता है, जिसकी हुकूमत सब पर लागू होती है, उसको भारत की पुरानी भाषा में धर्म कहते थे। वो न हिंदू होता था, न मुसलमान होता था, न जैन होता था, उसका शुद्ध स्वरूप फिर जागे तो सही माने में लोक कल्याण होना शुरू हो। कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। कोई व्यक्ति अपने मन में विकार पैदा करता है, क्रोध पैदा करे, कि द्वेष पैदा करे, कि दुर्भावना पैदा करे, कि ईर्ष्या पैदा करे, कि वासना पैदा करे, कि भय पैदा करे, कि अहंकार पैदा करे, कोई विकार पैदा करे, कुदरत का बंधा बंधाया नियम है, व्याकुल हो ही जाएगा, अशांत हो ही जाएगा। हिंदू हो तो हो जाएगा, मुसलमान हो तो हो जाएगा, जैन हो तो हो जाएगा, ईसाई हो तो हो जाएगा। कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती, किसी का लिहाज नहीं करती। धर्म इसी माने में धर्म है, कुदरत का नियम, विश्व का विधान, रित, स्वभाव, प्रकृति। और व्यक्ति अपने विकारों से मुक्त हो जाए, उसका चित्त निर्मल हो जाए, तो फिर कुदरत का बंधा बंधाया नियम कि जैसे ही चित्त विकारों से मुक्त होगा, अनंत मैत्री से भर उठेगा, अनंत करुणा से भर उठेगा, अनंत मुदिता से भर उठेगा, अनंत समता भाव से भर उठेगा। भीतर ही भीतर बड़ी शांति महसूस करेगा। जब किसी व्यक्ति के भीतर मैत्री जागती है, करुणा जागती है, अपनी ओर देखे, बड़ी शांति, बड़ी शांति, बड़ा सुख। कुदरत का नियम है भाई, इसमें हिंदूपना क्या, इसमें जैनपना क्या, इसमें मुस्लिमपना क्या? जो व्यक्ति अपने मन के विकारों को निकाल करके चित्त को शुद्ध कर लेगा, मैत्री करुणा सद्भावना से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे जैन हो, वो चाहे भारतीय हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रूसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य मनुष्य है। बहुत लोग ऐसे आए हैं जो विपश्यना के शिविरों में से नहीं गुजरे, जानना चाहते होंगे विपश्यना क्या है। यही विपश्यना है, कैसे कुदरत के नियम को अनुभूतियों के स्तर पर जान ले। प्रवचनों के स्तर पर नहीं बुद्धि विलास होगा, वाणी विलास होगा, पुस्तकों के स्तर पर नहीं बुद्धि विलास होगा, अनुभूतियों के स्तर पर स्वयं अनुभव करके जाने। आग पर हाथ रख दिया तो आग जलाती है, दूसरी बार सजग हो जाएंगे, आग पर हाथ नहीं रखना चाहिए, जलाती है। ऐसे ही अपने भीतर सच्चाई को देखने लगेंगे, कुदरत के कानून को देखने लगेंगे, तो देखेंगे जब जब विकार जगता है, व्याकुल हो जाता हूं, क्रोध जगाता हूं तो जलता हूं भीतर। अरे नहीं, मुझे जलने से बचना है, अपने आप को कैसे जलाऊं? नहीं, भीतर देखता है तो यही चिंतन चलता है, क्रोध नहीं आता और क्या होता? उसने ऐसी बात जो कह दी, उसने मेरा अपमान जो कर दिया, वो ऐसी बात नहीं कहता, मुझे क्यों क्रोध आता? बहिर्मुखी ही बहिर्मुखी, अपने दुखों का कारण बाहर ही देखे। कठिनाई तो ये कि अपने दुख को भी नहीं समझे कि अरे क्रोध पैदा करके मैंने उस व्यक्ति की हानि की या नहीं की। हो सकता है बिल्कुल हानि नहीं हो उसकी, अपनी हानि तो तत्काल कर लेना, जैसे ही क्रोध जगाया वैसे ही आग लगाई। कितना व्याकुल, कितना दुखियारा, अरे कभी अपनी ओर देखता ही नहीं। ये कुदरत का कानून किसी को नहीं छोड़ता। हिंदू क्रोध जगा ले तो व्याकुल हो जाएगा, मुसलमान जगा ले तो व्याकुल हो जाएगा, सिख जगा ले, ईसाई जगा ले, कोई जगा ले, व्याकुल हो ही जाएगा। व्याकुलता से बचना है, भीतर सुख शांति का जीवन जीना है। क्रोध जगा के व्याकुल होते हैं तो स्वयं ही दुखी नहीं होते, सारे वातावरण को दुखी बना देते हैं, सारे वातावरण को तनाव से भर देते हैं। जो हमारे संपर्क में आए वही दुखियारा हो जाए, स्वयं भी दुखी हों औरों को भी दुखी बनाए। अरे तो जीना नहीं आया ना, जीने की कला नहीं आई ना। और इसके विपरीत धर्म को समझ करके, बुद्धि के स्तर पर समझा हुआ धर्म काम नहीं आता, ऐन वक्त पर धोखा दे देता है। अनुभूति के स्तर पर समझा हुआ धर्म ऐन वक्त पर सहायक होता है तो होश जागता है, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों न हो। इस तरह की गलत प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि जानता है गलत प्रतिक्रिया करते ही मैं अपने आप की हानि करने लगा, अपने आप को दुखी बनाने लगा, जानबूझकर कोई कैसे अपने आप को दुखी बनाएगा? जानता नहीं इसलिए दुखी बनाता है अपने आप को। बुद्धि से तो खूब समझता है, बचपन से सुनता आया, तरह तरह के धर्म ग्रंथों में पढ़ता आया, अनेक गुरुओं की वाणी सुनता आया, क्रोध मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, ईर्ष्या मत करो, हाँ मत करो, नहीं करना चाहिए, सचमुच नहीं करना चाहिए, फिर भी तो करता ही है ना। जहां अनचाही बात हुई वहीं क्रोध करता है, द्वेष पैदा करता है, जहां मन चाही बात हुई वहीं राग पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है, स्वभाव बन गया। उस स्वभाव के बाहर कैसे निकले? अपने भीतर सच्चाई को देखने का काम कभी किया ही नहीं, कभी आंख बंद करके बैठा भी ध्यान करने के लिए, तो किया ध्यान किसी कल्पना का जिसका सच्चाई से कोई लेन देन नहीं, जो हमारी अनुभूति पर नहीं उतर रही है। ऐसी बातों का ध्यान करके हम अपने मन को डाइवर्ट अवश्य कर लेंगे। बहुत दुखियारे हैं, दुनियादारी की किसी घटना ने हमें बहुत दुखी बना दिया, तो किसी ने सुझाव दिया भाई ध्यान करो थोड़ी देर, तेरा दुख दूर हो जाएगा, तो बैठता है। वो बात जो मन को बार बार उत्तेजित करती है, उद्वेलित करती है, व्याकुल बनाती है, जरा उसे भुलाएं। कैसे भुलाएं? तो कोई और आलंबन, ऐसा आलंबन लें जिसमें मन लग जाए। तो भागते हैं, पलायन करते हैं, सामना नहीं करते। कुछ देर के लिए लगा जैसे हम दुख से मुक्त हो गए, क्योंकि मन हमारा किसी और बात में लग गया जो हमको बड़ी प्रिय लगती थी, हमारी परंपरा जिसे मानती थी, हमारी दार्शनिक मान्यता जिसे मानती थी, उसे मन लगाना आसान, उसमें मन लगा लिया, थोड़ी देर मन टिक गया वहां पर, तो लगा कि हम दुखों के बाहर आ गए। लेकिन कितनी देर, फिर वैसे के वैसे, फिर कोई अनचाही बात हुई उतना ही व्याकुल हो गया, मन चाही बात नहीं हुई उतना ही व्याकुल हो गया, बाहर कैसे निकलेगा? अपने देश में अनेक संत हुए, अनेक ऋषि हुए, भारत की पुरानी भाषा में ऋषि कहते थे, जो रित का दर्शन करे, सच्चाई का दर्शन करे, कल्पनाओं का दर्शन करे, वो ऋषि नहीं होता। संप्रदाय के जंजाल में पड़कर हर किसी को ऋषि कहने लगे अलग बात हुई। ऋषि वही होता है जो अपने भीतर सत्य का दर्शन करता है, और सत्य वो जो हमारी अनुभूति पर उतरे। किसी पुस्तकों में लिखा हुआ सत्य हमारे लिए सत्य नहीं है, किसी अन्य की अनुभूति पर उतरा हुआ सत्य हमारे लिए सत्य नहीं है, उसके लिए सत्य होगा। हमारी अपनी अनुभूति पर क्या सच्चाई उतर रही है? अपने भीतर यूं झांकना शुरू कर दे, देखना शुरू कर दे, प्रकृति का सारा रहस्य खुल जाएगा। अरे क्यों मैं व्याकुल हो जाता हूं? इस संसार के सारे लोग क्यों व्याकुल हो जाते हैं? इसका मूल कारण क्या है? और देख इस मूल कारण को जड़ों से उखाड़ने का ये तरीका हाथ आ गया, इसे उखाड़ा तो छुटकारा हो गया, मेरा भी दुखों से छुटकारा हो गया, जो करे उसी का दुखों से छुटकारा हो जाए। यूं धर्म समझ में आ गया, रित समझ में आ गई, उसका बौद्ध से कोई लेन देन नहीं, दूर परे का भी लेन देन नहीं, जैन से दूर परे का भी लेन देन नहीं, हिंदू से दूर परे का भी लेन देन नहीं, विश्वव्यापी धर्म, विश्वव्यापी कुदरत का कानून, रित जो सब पर लागू होता है, एक जैसा लागू होता है। कैसे भी विपश्यना मदद करती है इसमें। 10 दिन के लिए ऐसे किसी स्थान पर आना पड़ता है बाहर की दुनिया से अपने आप को काट कर, पलायन के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं। रोगी हो तो क्या करे, कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो भर्ती होना पड़े, पर अस्पताल में रहने के लिए नहीं आया। अस्पताल में अपना स्वास्थ्य फिर प्राप्त करके उसे जीवन में उतारने के लिए आया। तो 10 दिन इस अस्पताल में आ करके जो अस्वस्थ हो गया, मन अस्वस्थ हो गया, स्वयं स्थित नहीं है, उसको कैसे स्वयं स्थित कर लें, अपने सही स्वभाव में, उसके मूल स्वभाव में स्थित कर लें, तो स्वस्थ हो गया। आप उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, जीवन के सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे, जूझेंगे और मुस्कराते हुए जूझेंगे, चित्त समता से भरा होगा, मन का संतुलन नहीं खोएंगे, अपने मन में विकार नहीं जागने देंगे, इसके लिए आए। आते ही क्या काम किया, शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, अन्य प्राणियों का सुख क्षीण होता हो, उन्हें दुख पहुंचता हो, उन्हें पीड़ा पहुंचती हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये व्रत लिया, भले 10 दिन के लिए ही लिया, आगे जाकर तो जीवन भर निभाना है, पर एक बार आजमाने के लिए आया है तो 10 ही दिन के लिए सही, ऐसा काम नहीं करेगा। हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कड़वी बात नहीं बोलेगा, पर निंदा की बात नहीं बोलेगा, चुगली की बात नहीं बोलेगा और नशे पत्ते का सेवन नहीं करेगा। अब काम शुरू किया, ये क्यों लिए इस तरह के व्रत? जैसी जैसी आगे बढ़ेगा अपने आप को देखना शुरू कर देगा, अपने भीतर की सच्चाइयों को देखने लगेगा, कुदरत के कानून को देखने लगेगा, तो बात समझ में आएगी ये व्रत क्यों लिए मैंने। कि जब जब आदमी ये व्रत अपने जीवन में तोड़ता है, किसी की हत्या करता है, कि चोरी करता है, कि झूठ बोलता है, कि चुगली की बात कहता है, कि कड़वी बात कहता है, कोई ऐसा काम वाणी या शरीर से करता है जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचे, उनके सुख शांति भंग हो, कभी अपनी ओर नहीं देखता, अपनी ओर देखे तो पता लगे कि ऐसा काम तब तक नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा जब तक कि अपने मन में कोई विकार न जगा ले, क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा, वासना जगाएगा, लोभ जगाएगा, भय जगाएगा, कोई ना कोई विकार जगाएगा, तब वाणी से ऐसा काम करेगा जो औरों को हानि पहुंचाए, तब शरीर से कोई ऐसा काम करेगा जो औरों को हानि पहुंचाए, तो अपनी हानि करने लगा ना। ऐसे काम की शुरुआत ही इस बात से हुई कि अपने भीतर विकार जागा और अपने को व्याकुल बना दिया। अब अपने भीतर मैं क्यों व्याकुल हो जाता हूं, इसको देखते देखते बात समझ में आ जाएगी कि एक बार तो भले हमारे आचार्य ने कहा कि यहां रहते हुए इन व्रतों का पालन करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं, फिर बात समझ में आ जाएगी क्यों कर रहे हैं। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए कर रहे हैं। अब काम शुरू कर देगा, क्या काम का शुरू कर देगा, मन को वश में करने का काम शुरू कर देगा। ये बाहर बाहर के काम, बहिर्मुखी होकर के काम, ऐसे काम बहिर्मुखी होकर जो औरों को हानि पहुंचाएं और अपने आप को भी हानि पहुंचाएं, इनसे अपने आप को रोका। पर मन में तो वही खुराफातें चल रही हैं, मन ही मन किसी की याद आई जिससे अपने संबंध बिगड़े हुए हैं, आया क्रोध, आया द्वेष, आई दुर्भावना, कोई अपना धंधा याद आया, अरे वो हो जाए तो इतने लाख मिल जाए, इतने करोड़ मिल जाए, वो हमारा काम बन जाए तो हमको वो पद मिल जाए, वो प्रतिष्ठा मिल जाए, जागा राग, जागा लो, जागी आसक्ति। मन ने तो काम नहीं बंद किया ना, शरीर और वाणी पर रोक लगी, मन कैसे काम बंद करेगा? तो भाई उस पर अपनी मलकियत होनी चाहिए, वो हमारी हुकूमत में रहे, हम उसकी हुकूमत में नहीं। तो क्या करें? एक तरीका तो ये होता है, जैसे अभी कहा, मन को किसी ऐसे आलंबन में लगा दो जो उसको प्रिय लगे, और उसी आलंबन में लगा रहेगा तो ये दूषित विचार मन में नहीं पैदा करेगा। अच्छी बात है, ये भी एक तरीका है, ये तरीका भारत के अच्छे संतों ने इस्तेमाल किया और उसका लाभ भी हुआ, आज भी होता है। लेकिन ये विद्या तो और गहराइयों तक ले जाने वाली विद्या है। तो कहा नहीं, पलायन नहीं करना, किसी कल्पना का ध्यान नहीं करना, यथार्थ का ध्यान करो। आंख बंद करके बैठ गए,
मुंह बंद है, पालथी मार के बैठे हैं, शरीर से कोई काम करते नहीं, वाणी से कोई काम करते नहीं। अब क्या घटना घट रही है इस 3.5 हायत की काया में? क्या सच्चाई प्रकट हुई? इस क्षण की क्या सच्चाई है? तो हर कोई देख लेगा इस क्षण की ये सच्चाई है कि सांस भीतर आता है और सांस बाहर जाता है। ये घटना घट रही है, अपने आप घट रही है। बस यहीं से काम शुरू करो, इसी को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दो। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस की कसरत नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल कर भी नहीं करनी। सांस पर नियंत्रण नहीं, भूल कर भी नहीं करना। सहज स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। हमें तो तटस्थ भाव से अपने बारे में क्या सच्चाई है उसको जानने की कसरत करनी है, सांस की कसरत नहीं। सांस गहरा है तो उसे तटस्थ भाव से देखते हैं, अच्छा भाई इस समय सांस गहरा है। सांस छिछला है तो देखते हैं इस समय सांस छिछला है, न ये अच्छा है न वो बुरा है, तटस्थ भाव से उसे देख रहे हैं। अब के बाई नासिका से गुजर गया, अच्छा तो बाई से गुजर गया। अब के दाहिनी से गुजरा तो दाहिनी से गुजरा, दोनों से गुजरा तो दोनों से गुजरा। बस केवल देखे जा रहा है, कुछ नहीं करता, उसको बदलने का जरा भी काम नहीं करता। साक्षी भाव में स्थापित होता है, साक्षी भाव में स्थापित होता है। 2-3 दिन काम करते करते मन थोड़ा थोड़ा एकाग्र होने लगता है, उसे एक आलंबन मिल गया। जैसे हम कोई कल्पना का आलंबन लेवे तो मन को दूसरी ओर लगा दिया, थोड़ी देर के लिए लगा कि मन हमारा शांत हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर सांस का आलंबन लेते हैं तो उसे एक आलंबन दूसरा दे दिया और बातों से छुटकारा पाके इसमें लग गया। फिर भी दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। सांस देखने का काम किया तो यथार्थ देखने का काम किया, अपने बारे में जो सच्चाई है उसको देखने का काम किया। इस काम में जितना पकता चला जाएगा आगे जाकर के जीवन में ये सांस को देखने का काम बड़ा सहायक हो जाएगा। क्यों सहायक हो जाएगा? कुदरत का एक बंधा बंधाया नियम है कि जब जब हमारे मन में कोई विकार जागता है, क्रोध जागे, द्वेष जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, कोई विकार जागे, सांस कदापि स्वाभाविक नहीं रहेगा, अस्वाभाविक हो जाएगा, जरा तेज हो जाएगा, जरा भारी हो जाएगा। और जैसे ही विकार दूर हुआ सांस फिर स्वाभाविक हो जाएगा। अरे हमें तो अपने विकारों से छुटकारा लेना है, तो विकारों को देखना है कब जागे, कैसे जागे और कैसे इसे दूर कर सकते हैं। तो सांस को देखने का काम परोक्ष रूप से अपने चित्त को देखने का काम हो गया, अपने चित्त के विकारों को देखने का काम हो गया। बाहरी जीवन में जब कभी क्रोध जागा तो सांस तेज हो गया और सांस देखने की आदत हुई तो झट जान लिया, देख क्रोध आया ना, देख मुझे क्रोध आया ना। आदमी जब ये जान लेता है कि मुझे क्रोध आया ना तो क्रोध से छुटकारा पा लेगा। कठिनाई तो ये होती है पता ही नहीं लगता बेचारे को कब क्रोध आया और कब भूत की तरह सिर पर सवार हो गया, और उसके सवार होने पर वाणी से जो काम नहीं करना चाहिए था सो कर लिया, शरीर से जो नहीं करना चाहिए था सो कर लिया। उसके बाद जब क्रोध चला गया तब पश्चाताप करता है, अरे ऐसा तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था। अपने देवी देवता ईश्वर ब्रह्म किसी के पास भी ध्यान करके उनका नमस्कार करता है, प्रायश्चित करता है, रोता है, क्या फर्क पड़ा भाई? दूसरी बार फिर अनचाही बात हुई उतना ही क्रोध करेगा, तीसरी बार फिर अनचाही बात हुई उतना ही क्रोध करेगा। ये रोना, ये पश्चाताप करना कुछ काम नहीं आया, होश नहीं है ना। विपश्यना हमको सजग रहना सिखाती है। तो एक ओर सांस को देखना हमारे ये काम आया कि चित्त एकाग्र होने लगा, और दूसरी ओर ये काम आया कि जब जब जीवन में विकार जागेगा ये पहरेदार की तरह हमें सचेत करेगा, देख मालिक तेरे भीतर कुछ गड़बड़ होने लगा, कुछ गड़बड़ होने लगा। और उस समय कुछ नहीं करना, केवल सांस को देखो। देखते देखते सांस स्वाभाविक हो जाएगा, सांस स्वाभाविक हुआ तो विकार दूर हुआ, विकार आया तो सांस अस्वाभाविक हुआ, विकार गया तो सांस स्वाभाविक हो गया, ठीक इसी प्रकार सांस अस्वाभाविक हुआ तो कुछ गड़बड़ है, और सांस स्वाभाविक हुआ तो गड़बड़ दूर हुई, विकार दूर हुआ।
अरे बहुत बड़ा हथियार मिल गया ना।
लेकिन यही बात खत्म नहीं होती विपश्यना की, ये तो पहला कदम है, बड़ा नन्ना सा कदम है। मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से को सुधारने का कदम है। मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा, जिसे आज के पश्चिमी भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन चित्त कहें, भारत की पुरानी भाषा में ये शब्द नहीं इस्तेमाल होते थे, कुछ अचेतन, चेतन, अर्धचेतन, ऐसा कुछ नहीं, सारा का सारा मानस सजग है, सचेत है। पर किस बात पर सचेत है? ये ऊपर ऊपर का हिस्सा, जिसे उन दिनों की भाषा में कहा परित चित्त, माने परिमित चित्त है, छोटा सा चित्त है, यह हमेशा बहिर्मुखी रहेगा। आंख बंद करके चिंतन भी करेगा तो बाहर की बातों का ही चिंतन करेगा, किसी कल्पना का चिंतन करेगा, किसी मान्यता का चिंतन करेगा, अपने भीतर क्या हो रहा है नहीं देखेगा, देखना सिखाया नहीं उसे। बाकी का सारा जिसे अचेतन कहें, अर्धचेतन कहें आज की भाषा में, वो क्या करता है? वो प्रतिक्षण हमारी शरीर पर होने वाली संवेदनाओं से जुड़ा रहता है, और इस शरीर पर 3.5 हाथ की काया पर प्रतिक्षण कोई ना कोई जीव रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता रहता है, कोई ना कोई विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया होती रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होते रहता है, कुछ न कुछ खटपट होते रहता है। गर्मी सी आई, पसीना सा आया, धड़कन सी हुई, फड़कन सी हुई, सिहरन सी हुई, पुलकन सी हुई, खिंचाव सा हुआ, तनाव सा हुआ, भारीपन हुआ, हल्कापन हुआ, कुछ न कुछ होता रहता है सारे शरीर में, शरीर के अणु अणु में होता रहता है। जानते नहीं, कौन नहीं जानता? ये कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, ये परित चित्त नहीं जानता, पर बाकी सारे का सारा, उसे कहीं 95% हिस्सा मानस का प्रतिक्षण जानते रहता है, रात और दिन जानते रहता है, और जानते ही नहीं रहता, ऐसे स्वभाव शिकंजे में जकड़ गया कि प्रतिक्रिया करता है, अंध प्रतिक्रिया करता है, ब्लाइंड रिएक्शन करता है। रात को बहुत गहरी नींद में सोए हैं, कौन सोया है? जिसको परित चित्त कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सोया है, बाकी का सारा हिस्सा जाग रहा है। किस बात में जाग रहा है? मेरे शरीर के भीतर क्या हो रहा है, कैसी संवेदना हो रही है। गहरी नींद में सोए सोए कोई मच्छर काट गया, चेतन चित्त को नहीं पता कि मच्छर काट गया, दूसरे हिस्से को पता है मच्छर काट गया, क्योंकि दुखद संवेदना हुई, जो संवेदना हुई वो बड़ी दुखद हुई, तो रिएक्शन करता है, हाथ उठाकर उसे दूर करता है, मार देता है, और जहां दुखद संवेदना है वहां खुजलाकर उसको दूर करता है। अरे सारी रात न जाने कितनी बार मच्छर काटे, और कितनी बार ये द्वेष की प्रतिक्रिया की, सुबह कोई पूछे तो पता ही नहीं कितनी बार की, करते रहा सारी रात, किसी एक तरह से सोया है, चित्त सोया है, शरीर के वजन की वजह से भार आ गया, पीड़ा लगने लगी। चेतन चित्त को, कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता, पर अचेतन कहता अरे नहीं अच्छा लगा, बदल जल्दी, तो बदलता है, एक करवट ले ली, 10 मिनट भी उस करवट पर नहीं रहता कि फिर पीड़ा शुरू हुई, फिर दूसरी करवट ले ली। गहरी नींद में सोया है, सारी रात करवटें बदलता रहा, कौन बदलता रहा भाई? कॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं ना, ये अनकॉन्शियस बदलता रहा। इसीलिए भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने अनकॉन्शियस शब्द नहीं इस्तेमाल किया। जागता है वो तो इस चेतन चित्त से ज्यादा सजग है, पर पागल है, केवल एक ही बात पर सजग है, सुखद अनुभूति हो रही है कि दुखद हो रही है, बस इतना ही। और सुखद हो रही है तो जट राग जगाए, दुखद हो रही है तो जट द्वेष जगाए। अरे केवल रात की बात नहीं, दिन भर यही होता है, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये प्रवचन चल रहा है, होश नहीं हो तो क्या होता है? ये जैसे परित चित्त है, छोटा सा ऊपर वाला चित्त है, ये बोलने में मशगूल है, ऐसा बोलना है, बाकी ये बोलना है, अब कि ये कहना है, अब कि ये कहना है, और या लोगों के चेहरों को देखता है, मैं जो कह रहा हूँ क्या असर पड़ रहा है लोगों पर, ठीक असर पड़ रहा है ना, वो सारा इन सारे कामों में लगा रहेगा, बाकी का तो अपने ही काम में लगा है, कहाँ क्या हो रहा है शरीर में, कहाँ क्या हो रहा है, अरे इतनी देर हो गई बैठे बैठे, कहीं दबाव आ गया तो प्रतिक्रिया करता, नहीं अच्छा लगा मुझे, जल्दी बदल, तो यूं कर लेता है, थोड़ा सा यूं कर लेता है। किसी आदमी को 10 मिनट देखो, कितनी बार यूं करेगा, कितना मचकेगा, उस बेचारे को पता नहीं कि मैं मचक रहा हूं, ये क्या हो रहा है उसे पता नहीं, समझता है मेरे पास इतना धन दौलत, इतने पद, इतनी प्रतिष्ठा, मेरे जैसा सुखी कौन?
अरे तेरे जैसा दुखी कौन? तेरा 95% मन प्रतिक्षण दुख से भरा हुआ, प्रतिक्षण प्रतिक्रिया करने वाला, उसे जरा सा चैन नहीं, जरा सी शांति नहीं। तू औरों के लिए क्या सुख शांति बांटेगा रे? तेरे पास सुख शांति नहीं जरा सी भी।
विपश्यना ये करवाएगी, जड़ों को सुधारेगी। ये ऊपर ऊपर का हिस्सा सुधर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो परत है एक केवल। उस परत को टूटते हुए देर नहीं लगती, जब तक कि भीतर का मानस नहीं बदला, वो नहीं सुधरा, तब तक बात बनती नहीं। तो अगला कदम, सांस को देखते देखते शरीर पर संवेदनाएं क्या हो रही हैं? काम करते करते जिस क्षण शरीर पर जो संवेदना हो रही हो, किसी भी कारण से हो रही हो, उसे जाने, और केवल जान के नहीं रह जाए, समता में स्थापित हो, प्रतिक्रिया न करने दे, न राग जगने दे, न द्वेष जगने दे, न उसे दूर करने का प्रयत्न करे, न उसे समेटे रखने का प्रयत्न करे। दोनों के दोनों प्रयत्न हमको व्याकुल बनाने वाले, समेटता है या धकेलता है, समेटता है या धकेलता है, बेचैन होता है, अशांत होता है, और देखता है, अच्छा बाबा आपके घर में आई है, तुझे भी देखते हैं, तू कितनी देर रहती है? अनंत काल तक रहेगी, देखें कितनी देर रहती है। खुजली आई, अच्छा तुझे भी देखते हैं, कितनी देर रहेगी? तेज हुई, तेज हुई, तेज हुई, अरे देखते थे समाप्त हो गई, कब तक रहेगी? यूं इस शरीर और चित्त के प्रपंच को देखता है, यथार्थ को देखता है, कल्पनाओं का ध्यान नहीं करता। हमारी दार्शनिक मान्यताएं क्या कहती है, हमारी पुस्तक क्या कहती है, हमारा अमुक गुरु महाराज ने क्या कहा, लेन देन नहीं उससे। मुझे क्या हो रहा है, अपने बारे में क्या सच्चाई है, उसे क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण यथाभूत देखता है, साक्षी भाव से देखता है। स्वभाव पलटना शुरू हुआ, अंतर मन की गहराइयों तक स्वभाव पलटना शुरू हुआ। ऊपर ऊपर की बात नहीं, समय लगता है। 10 दिन में कोई इस विद्या में पारंगत हो जाए ऐसा विश्वास भी नहीं, ऐसी आशा लेकर भी नहीं आना चाहिए, पर एक विद्या की शुरुआत हो गई। अब रोज अपने दिन भर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सुबह शाम ये विद्या का अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि दिन भर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसी ये विद्या हमारी मदद करने लगी। जैसे सांस मदद करने लगा, वैसे ही देखेंगे सांस का हमारे मन से और मन के विकारों से बड़ा गहरा संबंध है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का हमारे मन से, मन के विकारों से बड़ा गहरा संबंध है। क्रोध जाएगा तो भीतर जलन शुरू हो जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, तनाव आ जाएगा, कोई विकार जागे, कोई ना कोई प्रतिक्रिया, ये शारीरिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। मन प्रतिक्रिया नहीं करेगा, देखेगा उसको, अच्छा ये खटपट हुआ, गर्मी आई, बड़े जोरों से गर्मी आई, किस बात की आई, मौसम की आई? अरे नहीं, मौसम की नहीं, क्रोध आया इसलिए आई भाई, इसी को देख। लगा देखने, लगा देखने, देखते देखते दमन नहीं हुआ, शमन हो गया, छुटकारा हो गया। कहाँ छुटकारा हो गया? अंतर मन की गहराइयों तक छुटकारा हो गया। ये केवल कॉन्शियस माइंड तक दूर करने की बात नहीं, अंतर मन की गहराइयों तक जहाँ उद्गम होता है, जहाँ विकार आरंभ होते हैं, वहाँ अनारंभी बनने लगा। ये जो बार बार कहा गया महापुरुषों द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा, संतों द्वारा, सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभों का त्याग कर दे, आरंभ होने ही न दे। अरे अंतर मन की गहराइयों में आरंभ हो रहा है और हम केवल ऊपर ऊपर के कॉन्शियस माइंड पर उसको दबाए बैठे हैं, तो हम सर्वारंभ परित्यागी नहीं हुए। आरंभ तो है ही ना, हो ही रहा है ना, आरंभ ही न होने दे। चित्त धारा पर राग का आरंभ न होने दे, चित्त धारा पर द्वेष का आरंभ न होने दे। तो चित्त धारा पर राग का आरंभ होता है शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के साथ। बाहर की घटना घटी और लगा कि उसकी वजह से मुझे राग जागा मेरे मन में अथवा द्वेष जागा, अरे धोखे की बात है। बाहर की घटना घटी, उसकी वजह से मेरे भीतर संवेदना जागी, सुखद जागी या दुखद जागी। वो घटना अच्छी लगी तो सुखद जागी, वो घटना बुरी लगी तो दुखद जागी। उसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई मानस की, उसके बाद राग जागा या द्वेष जागा। कभी अपने भीतर देखा नहीं ना, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। तो कैसे जाने इस कुदरत के खेल को कि भीतर क्या हो रहा है, कैसे ये प्रपंच चल रहा है? आप देखने लगेगा तो देखते देखते जड़े निकालता चला जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था आएगी कि नए विकार जगाता नहीं और पुराने जितने इकट्ठे थे इस साधना के द्वारा उभर उभर के ऊपर आएंगे, निकलते जाएंगे, उभर उभर के ऊपर आएंगे, निकलते चले जाएंगे, पुराने भी समाप्त हो गए, नए बनते नहीं, आदमी ही बदल गया। अब उसको जोर जबरदस्ती इन व्रतों के पालन करने की जरूरत नहीं, अब बाह्य जीवन में उसको किसी की हत्या मत करो रे ऐसा उसे समझाने की जरूरत नहीं, कर ही नहीं पाएगा हत्या, कैसे कर पाएगा? अपने भीतर क्रोध जगाए, द्वेष जगाए, दुर्भावना जगाए तब ना हत्या करेगा। अपने भीतर क्रोध ही नहीं जागता, द्वेष ही नहीं जागता, दुर्भावना ही नहीं जागती तो हमको सहज स्वभाव है, मूल स्वभाव है वो हमेशा राग विहीन रहने का, द्वेष विहीन रहने का। इसी मिली कहती है उसमें स्थापित हो जाए, स्वयं स्थापित हो गया, स्वस्थ हो गया, अब उससे दुष्कर्म होगा नहीं, ऐसा काम करेगा ही नहीं जिससे औरों की हानि हो, क्योंकि ऐसा काम करेगा ही नहीं जिससे उसकी अपनी हानि हो, अपने भीतर विकार जागेगा नहीं। जिन आ गया, जिन्हें की कला आ गई। एक और बहुत बड़ी बात इस विद्या में ये कि इस काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को अपना संप्रदाय नहीं बदलना पड़ता। कल से अपने को बौद्ध कहो तो किसी दूर बादलों में बैठे हुए ऐसे किसी भगवान बुद्ध की कृपा हो जाएगी और तुम राग और द्वेष से मुक्त हो जाओगे, तुम बड़े सुखी हो जाओगे, तुम्हारा बड़ा कल्याण हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। क्या मिल गया भाई, अपने आप को बौद्ध कहने लगे, मिल क्या गया? नहीं होती ना कृपा। जितने बौद्ध हैं उनको राग नहीं जागता हो, उनको द्वेष नहीं जागता हो, उनके मन में व्याकुलता नहीं आती हो, तब तो सचमुच यही करना चाहिए, दुनिया के सारे लोगों को बौद्ध बना दो तो बेचारों के दुख दूर हो जाएंगे। अरे जो बौद्ध हैं उनके नहीं दुख दूर हुए तो औरों के कैसे हो जाएंगे रे, धोखे की बात हुई ना। अथवा सारी दुनिया को हिंदू कहना शुरू कर दो, क्या मिल गया भाई, कल से अपने को हिंदू कहना शुरू कर दे तो मन में विकार आने बंद हो जाए और दुख आने बंद हो जाए और जीवन सुख शांति से जीने लगे, तब तो जरूर ऐसा करो। नहीं होता ना। या कल से अपने को मुसलमान कहने लगो, या सिख कहने लगो, या ईसाई कहने लगो, नहीं होता ना, तो धोखा है ना, धर्म के नाम पर कितना बड़ा धोखा। धर्म को जब सार्वजनीन धर्म है यूं समझने लगेगा, ये सारे जंजाल दूर हो जाएंगे। सांप्रदायिकता ने इस कदर जकड़ रखा है कि धर्म अपने आप में स्वतंत्र एक हस्ती रखता है, ये बात ही भूल गए। धर्म है तो हिंदू धर्म होना चाहिए, तो मुस्लिम धर्म होना चाहिए, तो जैन धर्म होना चाहिए, तो बौद्ध धर्म होना चाहिए, तो कोई धर्म हुआ नहीं, धर्म क्या हुआ, बात ही भूल गए। ये बात भूल गए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना, तो समझदार लोगों ने, यही समझदारी थी उस समय की, क्योंकि उनका दोष नहीं, ये अपने देश की परंपरा जो बिगड़ चुकी उसका दोष, उन्होंने संविधान में लिख दिया कि हमारा राज्य, हमारी हुकूमत धर्म निरपेक्ष होगी। कहना क्या चाहते थे, संप्रदाय निरपेक्ष होगी, और कह गए धर्म निरपेक्ष होगी, क्योंकि धर्म और संप्रदाय पर्यायवाची शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, तो धर्म निरपेक्ष कह दिया। बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ी हानि तो ये हुई कि अब स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं, क्योंकि धर्म की शिक्षा देंगे तो कौन से धर्म की दें ये प्रश्न उठेगा। हिंदू धर्म की शिक्षा दें तो मुसलमान नहीं मानेंगे, मुस्लिम धर्म की शिक्षा दें तो हिंदू नहीं मानेंगे, कौन से धर्म की शिक्षा दें, कठिनाई खड़ी हो गई, तो धर्म की शिक्षा ही मत दो। कितनी बड़ी हानि हुई। अरे कोई भी राज्य, कोई भी सरकार धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकती है, धर्म सापेक्ष होती है तो सरकार होती है। या आपके पास जज बैठे हैं, क्या पिनल कोड कहता है देश का, क्या दंड संहिता कहती है, कोई हत्या करे तो ये दंड देंगे ना, कोई चोरी करे ये दंड देंगे ना, कोई झूठ बोल के किसी को ठगे ये दंड देंगे ना, तो धर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे यही तो धर्म है, तो धर्म सापेक्ष होती है सरकार, संप्रदाय निरपेक्ष होनी चाहिए सरकार। जो सरकार किसी संप्रदाय का फेवर करने लगे, पक्षपात करने लगे, तो सारे देश को डुबो देगी, वो सरकार अच्छी सरकार नहीं हो सकती। लेकिन धर्म का तो साथ देना ही चाहिए, तो तो इतने दिन बीते सो तो बीते, अब तो जागे, अगली पीढ़ी तो सुधरे, आगे शिक्षा में किस तरह धर्म समा जाए, बच्चों को कैसे धर्म का जीवन जीना है ये उनको बचपन से ही सीख लें। सारा जीवन है ना उनके सामने, सुख शांति का जीवन जिएंगे। आज धर्म के नाम पर जो खून खराबा हो रहा है, धर्म के नाम पर जो द्वेष दौर मनुष्य चल रहा है, देश के नाम पर इतना बैर भाव, इतना पृथकता का भाव, गंदगी ही गंदगी, और धर्म के नाम पर हर व्यक्ति समझता है कि मैं अपने धर्म को शुद्ध रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूं, हत्या भी कर रहा हूं तो अच्छा ही है करना, किसी को हानि भी पहुंचा रहा हूं तो अच्छा ही है ऐसा करना, समझता नहीं। अरे ऐसा करते हुए तू अपनी हानि कर रहा है ना, तेरे भीतर क्या हालत है कभी देखी नहीं ना अपने भीतर। अरे ये बातें बचपन से बच्चों को मालूम हो जाए, पहले तो उपदेश ही देंगे तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कड़वी बात नहीं करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये उपदेश की बात हुई, आरंभ तो इसी से होता है, उपदेश से। फिर जैसे जैसे बच्चे में थोड़ा होश आने लगेगा तो बुद्धि के स्तर पर उसे समझाएंगे कि देख भाई, जब तू किसी पर हाथ उठाता है, किसी को मारता है, ऐसे ही कोई तुझे मारे तो तुझे अच्छा लगेगा, तो कहेगा नहीं अच्छा लगेगा। तो तू अगर मारता है किसी को तो उसको भी नहीं अच्छा लगता ना, तो इससे बचना चाहिए ना। जो काम तुझे नहीं अच्छा लगता वो औरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई तेरी वस्तु चुरा ले तुझे बुरा लगेगा ना, ऐसे ही तू भी किसी की वस्तु चुरा ले तो उसे बुरा लगेगा ना। तो जो बात तुझे अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, औरों को भी बुरी लगती है, वो नहीं करना चाहिए ना। एक सीढ़ी आगे बढ़ा, इतनी सी बात छोटे छोटे बच्चे के समझ में आने लग जाए, और जरा बड़ा हो तो उसे समझाए, भाई देख मनुष्य है ना सामाजिक प्राणी होता है, समाज का एक अंग होता है, उसे समाज में रहना है, परिवार में रहना है, लोगों के साथ रहना है, घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाए तो भी संसार से माने समाज से उसका संपर्क नहीं टूटता। तो भाई देखो, कोई भी काम ऐसा करोगे जिससे समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी, जिससे समाज की सुख शांति बिगड़ेगी, तो बताओ वो तुम्हारे लिए भी कैसी अच्छी होगी। तुम अपने चारों ओर आग लगा लोगे तो वो आग की लपटें तुम्हें भी तो व्याकुल बनाएगी ना। तुम्हारे कर्मों से सभी लोग दुखी हों तो वो दुख तुम्हें सुख कैसे देगा। सोचेगा बात ठीक है, मुझे समाज में रहना है, समाज की व्यवस्था सुख शांति से बनी रहे, इसमें मैं भागीदार बन जाऊं, सहयोगी बन जाऊं। फिर बुद्धि के स्तर पर एक बात और समझेगा, आरंभ करते ही आनापान करने लगा, केवल उपदेश नहीं है साथ साथ आनापान करता है, कुछ समय के बाद विपश्यना करने लगा, अरे अब तो उसको ये समझावन देने की जरूरत नहीं, फिर तो खुद समझने लगा कि अरे भाई जब जब मैं ऐसा कोई काम करता हूं जिससे अन्य प्राणियों की हानि होती है, अपनी हानि तो पहले कर लेता हूं, अपने भीतर विकार जगा की अपनी हानि कर लेता हूं। विद्यार्थी जीवन में हर बच्चा हर बच्चे जब इस सच्चाई को जानने लगेंगे कि ये काम जिससे हम औरों की हानि कर रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर करते हैं, किसी के नाम पर करते हैं, औरों की हानि कर रहे हैं, तो अपनी हानि पहले कर रहे हैं भाई, अपने भीतर क्रोध जगाया ना। हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है, हमारी परंपरा ये कहती है, हमारा संप्रदाय ये कहता है, मार डालो दूसरों को, या तो हमारे जैसे बन जाए तो मार डालो। जब ऐसा किया तो अपने भीतर क्रोध जगाया कि नहीं, द्वेष जगाया कि नहीं, दुर्भावना जगाई कि नहीं, और जगाई तो व्याकुल हुए कि नहीं। उपदेश की बात नहीं है, अब अपने अनुभव की बात है, देखने लगेगा। हर युवक हर युवती इस रास्ते चलते चलते देखने लगेंगे, मुझसे कोई ऐसा काम न हो जाए जो मेरी हानि कर दे। अरे किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हत्या नहीं करके, चोरी नहीं करके, व्यभिचार नहीं करके, झूठ नहीं बोल करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपने मंगल के लिए कर रहे हैं, अपनी सुख शांति के लिए करने लग रहे हैं, बात ही बदल गई सारी की सारी। और सबसे बड़ी बात ये समझ में आ जाएगी, अरे भाई इसमें हिंदूपने की क्या बात है रे, इसमें बौद्धपने की क्या बात है रे, इसमें ईसाईपने की क्या बात है रे, ऐसा काम बौद्ध करे तो व्याकुल हो जाएगा, हिंदू करे तो व्याकुल हो जाएगा, जैन करे तो व्याकुल हो जाएगा, तो सार्वजनीन बात हो गई ना, संप्रदाय अपने आप दूर हो गया। जो व्यक्ति सचमुच विपश्यना में पक गया वो संप्रदायवादी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो जाति पाति का भेद करने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभूति से जानता है, अरे ये अमुक कुल में जन्मा है, अच्छा ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो क्या हुआ, ऐसा ही है ना, कुदरत के कानून तो वैसे ही लागू करता है ना, उस पर विकार जगाता है, व्याकुल होता है, विकारों से मुक्त होगा उस दिन व्याकुलता से छुटकारा पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा, अपने को हजार ब्राह्मण कहता रहे, ऐसे ही शुद्ध रहे तो क्या हो गया, विकार जगाएगा व्याकुल होगा, और विकार जगाना बंद कर देगा व्याकुलता के बाहर निकल आएगा। क्या फर्क पड़ गया भाई, इस घर में जन्मा कि उस घर में जन्मा, इस परिवार में जन्मा कि उस परिवार में जन्मा, इस जात में जन्मा कि उस जात में जन्मा, ठीक इसी प्रकार समझने लगेगा, क्या फर्क पड़ गया भाई, हिंदू के घर जन्मा कि बौद्ध के घर जन्मा कि जैन के घर जन्मा कि ईसाई के घर जन्मा, और क्या फर्क पड़ गया भाई, आज तक अपने को हिंदू कहते कहते कल बौद्ध कहने लगा, या कल जैन कहने लगा, या मुसलमान कहने लगा, क्या फर्क पड़ गया भाई, फर्क तो तब पड़े जब मन विकारों से छुटकारा पाए। ये बात जितनी जल्दी जिस व्यक्ति के समझ में आ जाए, इन उपदेशों से नहीं समझ में आती, ये तो शमशान ज्ञान, सुनेंगे तब तक बड़ा अच्छा लगेगा, और बाहर गए तो बिल्कुल वैसे के वैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अनुभूतियों से जब जानेगा तो भारत की अध्यात्म की विद्या, श्रुति सुनो, धर्म की बात सुनो, पढ़ो, स्मृति उसे याद करो, चिंतन करो, बुद्धि द्वारा समझो, मनुष्य होना, मनुपुत्र किस माने में कि उसका स्वभाव है मनन करना, चिंतन करना, नहीं तो मनुपुत्र नहीं, तो मनन करे, चिंतन करे, लेकिन वहीं गाड़ी रुक जाए तो ये ऊपर ऊपर का कॉन्शियस माइंड सुधर के रह गया। अनुभूति, अब उसी सच्चाई को अनुभूति पर उतारो तो अंतर मन की गहराइयों तक पलट जाएगा, सुधर जाएगा, आदमी बन जाएगा, सुख से जीना आ जाएगा, फिर यूं सचमुच कहने लगेगा कि अरे सारा विश्व हमारा कुटुंब है भाई, एक के दुख में सबका दुख समाया हुआ, एक की सुख शांति में सबकी सुख शांति समाई हुई, सबके दुख में मेरा दुख समाया हुआ, सबके सुख शांति में मेरी सुख शांति समाई हुई। उपदेश की बात नहीं रह गई, अब अनुभूति की बात हो गई, अनुभूति की बात हो गई तो कल्याण की बात हो गई, तो मंगल की बात हो गई। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, गृहस्थ है ना, दूर भागना नहीं है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे हम अच्छा जीवन जिए, धर्म का जीवन जिए, अपने आप को संप्रदाय से दूर रखते हुए, जात पात से दूर रखते हुए, गोरे काले से दूर रखते हुए कैसे धर्म का जीवन जिए, हमारे भीतर कैसे धर्म समा जाए, माने विकारों से कैसे मुक्त हों, तो हमारा जीवन कैसे सुख शांति से भर जाए, और कैसे हम औरों की सुख शांति का कारण बन जाए, औरों की सुख शांति भंग नहीं होने दें। बस जीना आ गया, जीने की कला आ गई, हिंदू हिंदू ही रहे, अपने को हिंदू ही कहे, मुसलमान मुसलमान ही रहे, जैन जैन ही रहे, बौद्ध बौद्ध ही रहे, ईसाई ईसाई रहे, अच्छा आदमी बन जाए। अरे जो अच्छा आदमी ही नहीं है वो अच्छा हिंदू कहाँ से होगा, वो अच्छा मुसलमान कहाँ से होगा, अच्छा ईसाई, अच्छा सिख, अच्छा यहूदी कहाँ से होगा। धर्म अगर सचमुच धर्म है तो हमें अच्छा आदमी बनाना सिखाता है, विपश्यना यही सिखाएगी कैसे अच्छे आदमी बने। इस मान्यता को मानने वाला हो कि उस मान्यता को मानने वाला हो, ऐसे व्रत त्योहार करने वाला हो कि वैसे व्रत त्योहार करने वाला हो, ऐसी पूजा पाठ करने वाला हो कि वैसी पूजा पाठ करने वाला हो, ऐसी भूष वेशभूषा वाला हो कि वैसी वेशभूषा वाला हो, एक ही बात समझ में आएगी, आदमी आदमी है भाई, कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है, विकार जगाएगा तो व्याकुल हो जाएगा, व्याकुलता से बचना है तो विकारों को जड़ों से निकालना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ों से जिसने विकार निकाल लिया सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अपना भी कल्याण साध लेगा, औरों का भी कल्याण साध लेगा। भारत के लिए ऐसे दौर में से गुजर रहा है जहां पर अशांति ही अशांति, बेचैनी ही बेचैनी, अरे भाईचारे का नामो निशान नहीं रह गया। हिंदू अपने को हिंदू कह के गर्व करता है लेकिन भीतर भाईचारे का नामो निशान नहीं, सिख अपने को सिख कह के गर्व करता है पर अंदर भाईचारे का नामो निशान नहीं, मुस्लिम अपने को मुसलमान कह करके, ईसाई अपने को ईसाई कह करके, भीतर भाईचारे का नामो निशान नहीं। उपदेशों से नहीं आएगा भाई, अगर उपदेशों से आता तो भारत जैसा देश तो भाईचारे से एकदम भर जाता, सद्भावना से भर जाता। अपने यहाँ उपदेशों की क्या कमी, नहीं आता ना। कब आएगा? जब भीतर से मानव पलटना शुरू होगा, उसका मानस पलटना शुरू होगा और एक एक व्यक्ति का मानस पलटना शुरू होगा। बहुत बड़ा काम है, पर बहुत बड़े काम की भी कहीं तो शुरुआत हो। अगली पीढ़ी के लिए शुरुआत करें, अगली पीढ़ी के लिए शुरुआत तब करेंगे जब पहले चख के देख लें खुद कि ठीक बात बड़ी वैज्ञानिक है, सांप्रदायिकता विहीन है, इसका किसी संप्रदाय से लेन देन नहीं, और ये सचमुच यहीं इसी समय इसी जीवन में फल देने वाली है, कल्याण करने वाली है। मरने के बाद कुछ होगा? अरे कौन देखने गया मरने के बाद क्या होता है, अब क्या हुआ, अब सुधरा कि नहीं, मैं ऐसा फल देने वाली है। तो फिर बच्चों तक ये बात पहुंचानी ही चाहिए। बच्चों का ही मंगल, केवल बच्चों का मंगल नहीं, सारे देश का मंगल हो जाएगा, देश के भविष्य का मंगल हो जाएगा, ये सारी अशांतियां दूर हो जाएंगी, ये सारा अंधेरा दूर हो जाएगा, धर्म का प्रकाश जागे, सही माने में सही धर्म का प्रकाश जागे, सांप्रदायिकता से दूर, दार्शनिक मान्यताओं से दूर, सारे जंजालों से दूर, कर्मकांडों से दूर। अपने चित्त को सुधारना है बस, एक ही बात, एक के साधे सब सधे, सब सज जाएंगे, इस एक को सुधारना है, इस एक को साधना है। जागे धर्म, भारत का पुराना धर्म जहां सांप्रदायिकता का नामो निशान नहीं, शुद्ध धर्म जो कुदरत के कानून को धर्म मानने वाला, फिर जागे। और भारत के दुखियारों का ही कल्याण नहीं हो, सारे संसार के दुखियारों का कल्याण हो। भारत की भावी पीढ़ी का ही कल्याण न हो, सारे संसार की भावी पीढ़ी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति।